पंचाध्याय लेक्चर नंबर 4 सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथ राशि पंचाध्यायी है और उसके पृष्ठ संख्या 5 पर हम आ गए हैं। आप कुछ कह रहे थे?
हाँ, 14 नाम बताएंगे द्रव्य के बारे में बताएंगे।
द्रव्य तत्व सत्, द्रव्य तत्व सत्व सत्ता सत् अन्वय वस्तु अर्थ पदार्थ सामान्य गर्मी देश समवाय समुदाय।
बहुत अच्छा।
और दूसरा कोई बताना चाहता है? हाँ बोलो। बहुत अच्छा।
कल बाकी इन लोगों ने बताया था?
कोई नहीं बोल रहे कि मैं बोलूंगा,
ऐसे ऐसे नहीं है ना।
अश्विन में बोलने वाले नहीं,
अश्विन
वो उनका शाम को मोड रहता है। शाम
कल प्रेरणा में हमारे क्या नाम है,
कल से बोल दी
कल सैटरडे ना।
हाँ,
सुशीला बेन बोलिए, सुशीला बेन जैसो और अश्विन भाई
सुशीला बिन ने बोलने का, ये दोनों ने
बोला। ऐसा नहीं लगे ना हमको निकलेक्ट करते
हैं। नहीं, कल कल सुनाया सबने,
बहुत अच्छा है। ये क्या होता है, हम अपने ही कितने नाम है उनको तो एक हजार आठ है, हमको तो बहुत चौदह नाम तो याद रखो ना। आगे बढ़िए सर।
देखो, हम यहाँ 5 नंबर के पृष्ठ पर आए थे जहाँ श्लोक 8 से 14 तक का सार लिखा है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। जैन धर्म ने इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को, वस्तु ने यह द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ को, द्रव्य को सत स्वरूप, सत यानी उसकी हयाती मौजूदगी है, सत्ता है, स्वतः सिद्ध यानी वो है अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, वो कभी नया बना नहीं है तो उसका नाश का भी सवाल नहीं है, अनादि अनंत माना है। प्रत्येक पदार्थ पर से निरपेक्ष, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं है, न टिकने में है और न ही परिणमने में है। स्व सहाय यानी अपने ही सहाय से हो है, यानी सेल्फ सफिशियंट है वो, अखंडित अनादि अनंत अपने त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहता हुआ, यानी कायमी स्वभाव जो है वो उसमें स्थिर रहते हुए पर्याय द्वारा परिणमन किया करता है, यानी उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है परंतु द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्थाएं बदलती है, अवस्थाओं को यहाँ पर्याय कहा। पर्याय के प्रकरण में उसकी और विशेषताएं हम देखेंगे। इसके विपरीत 5 नंबर का पृष्ठ नीचे से तीसरा, वो जो बड़ा पैराग्राफ है, इसके विपरीत यानी जो जैन दर्शन का जो मत है, जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है जैसा वस्तु का स्वरूप है, उसके विपरीत है उल्टा। जगत में जितने मत मतांतर है, अन्य मतियों के जो कोई कल्पनाएं हैं, उन्होंने अनेकों तरह से तत्व को माना है, यानी उनके अपने अपने इमेजिनरी अलग अलग तत्व है, कोई 25 तत्व मानता है, कोई क्या कहता है, उन सब का संग्रह, तो संग्रह नहीं उसका कलेक्शन को इकट्ठा किया है ग्रंथकार ने, चार मान्यताएं दिखलाकर उनका खंडन दोषों की आपत्तियों द्वारा किया है। वे क्या मानते हैं और वैसा मानने में क्या आपत्ति आ सकती, क्या दोष वहां खड़ा होता है, उसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी। यह ग्रंथकार की विचक्षण बुद्धि का कमाल है। विचक्षण यानी अलौकिक जो बुद्धि है, विलक्षण, कि उन्होंने विश्व के संपूर्ण मतों की मान्यताओं को अथवा संपूर्ण न्याय शास्त्रों के सार को पांच चार श्लोकों में ही भर दिया है। पहले तो अपने मत का वहां प्रस्तुतिकरण किया है और बाद में अन्य मतियों का खंडन किया। ग्रंथकार ने इसकी विशेष चर्चा इसलिए नहीं की, उन्हें अध्यात्म ग्रंथ बनाना इष्ट था और अध्यात्म विषय का इससे कोई खास प्रयोजन नहीं। यहाँ पर तो प्रयोजन केवल श्लोक नंबर 8 में दिखलाए हुए तत्व से है। अस्ति पक्ष से हमारा प्रयोजन है, नास्ति पक्ष से नहीं। नास्ति ने अन्य मतियों का जो मत है वो नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है, ये उन्होंने बता दिया। नास्ति पक्ष का तो संक्षेप में चार पद्यों में खंडन करके आगे संपूर्ण ग्रंथ में अस्थि पक्ष का ही निरूपण करेंगे। ये बार बार अन्य मतियों की मान्यता नहीं बताते बैठेंगे, अभी यहाँ तो उन्होंने उनकी मान्यता क्या है और वो कैसे गलत है ये बात यहाँ बता दी। श्लोक नंबर 8 में, ये श्लोक नंबर 8 याद है क्या? हाँ बिली भाई, नहीं मंगलाचरण और हमेशा याद करते हैं आप उसको, जब से पंचादय पहली बार पढ़े थे तभी से, यही है ना वो तत्त्वम सल्लक्षणिक सन्मात्रम आयतः सतसि, मुझे मंगलाचरण के रूप में हम अभी रोज कहेंगे इसको। तो 8 नंबर के श्लोक में जिस वस्तु को सत रूप बताकर आए हैं, अब वह सत सामान्य विशेषात्मक अखंड है, केवल यानी सिर्फ सामान्य रूप या केवल विशेष रूप नहीं है, इसका ऊहापोह ने उसकी चर्चा, ऊहा यानी आपको हो इसका प्लस माइनस पॉइंट जो कुछ है ऊहापोह पूर्वक 15 से 22 तक वर्णन करते हैं, यानी अभी आने वाले श्लोकों में उसी का वर्णन चलेगा कि द्रव्य के सामान्य विशेषात्मक पने का वर्णन 15 से 22 तक। प्रकृति विषय, प्रकृति यानी चालू विषय वर्तमान का, श्लोक 8 से चालू, क्योंकि 9 से आगे अन्य मतियों का खंडन किया था, 8 में जो बातें बताई है वही से विषय आगे चलेगा। इसके लिए 15 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। किं चैवं भूतापि च सत्तानस्या निरंकुशा किन्तु सप्रतिपक्षा भवति हि सप्रतिपक्षेण नेतरेणेह। जिस सत्ता को श्लोक नंबर 8 में वस्तु का लक्षण बतलाकर आए हैं, सत्य वस्तु का लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम, वह सत्ता भी निरंकुश निरपेक्ष स्वतंत्र नहीं है, अर्थात विशेष निरपेक्ष केवल सामान्य सत्ता नहीं है, अर्थात सामान्य के प्रदेश भिन्न हो और विशेष के प्रदेश भिन्न हो, उनमें से विशेष के प्रदेश छोड़कर केवल सामान्य के प्रदेशों की ग्राहक हो, ऐसा नहीं है। ग्राहक यानी उसको जानने वाला, ग्रहण शब्द का अर्थ होता है जानना, किंतु क्या है सप्रतिपक्ष यानी अपने प्रतिपक्ष सहित है, सामान्य है, सामान्य का प्रतिपक्ष क्या है विशेष, यानी सामान्य है वो विशेष के बिना का नहीं है, यानी विशेष के बिना सामान्य नहीं है, सामान्य के बिना विशेष, जहां सामान्य है वहां विशेष है ही है। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पहले 5 नंबर पर क्या कहा कि ये जो सत्ता है वो निरंकुश निरपेक्ष स्वतंत्र नहीं है, यानी विशेष है ही नहीं, मात्र सामान्य ऐसा नहीं है। यानी सामान्य कहीं अलग रहता हो हिमालय में और विशेष पर्याय वहाँ कहीं कन्याकुमारी में रहते, ऐसा है ही नहीं। यानी उसमें प्रदेश भिन्नता नहीं, एक ही क्षेत्र में एक ही द्रव्य, उसको ही हम सामान्य की आंखों से देख सकते हैं, उसी द्रव्य को विशेष की अपेक्षा भी देख सकते हैं। तो वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक मिलकर एट ए टाइम दोनों ही है। देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हम एक एक को मुख्य करके हम अभी सामान्य को देखेंगे, अभी हम विशेष को देखेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो वस्तु जिसको कहेंगे प्रमाण का विषय, प्रमाण यानी एट ए टाइम सामान्य विशेष दोनों को इक्वली रख के जो जानना होगा उसको कहेंगे प्रमाण। एक को मुख्य करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये नहीं, हमने अकेले सामान्य का ग्रहण किया, विशेष है मगर उसको गौण किया। जब विशेष को अधिक रूप से स्पष्ट रूप से जानना है तो सामान्य को गौण करेंगे, परंतु वस्तु तो प्रमाण रूप यानी जानना जो है वो प्रमाण से जो जाना है उसी में हम मुख्य गौण कर सकते हैं। यदि मुख्य गौण के बिना सर्वथा अगर मान लिया तो गलत हो जाएगा। यही कहते हैं यहाँ पर कि जो वस्तु की जो सत्ता है कैसी सप्रतिपक्षा है। 6 नंबर के प्रश्न पर हम पहली लाइन पर है, अर्थात विशेष सहित सामान्य है, वह प्रतिपक्ष पना अपने प्रतिपक्ष के साथ है। प्रतिपक्ष समझते हैं, अपोजिट पार्टी। सामान्य के अपोजिट कौन है, विशेष, और विशेष का अपोजिट सामान्य, वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अर्थात सामान्य का प्रतिपक्ष पना अपने विशेष के साथ है, दूसरे पदार्थ के साथ है। यानी जो एक ही वस्तु सामान्य विशेषात्मक बताते हैं, क्योंकि वस्तु तो अपने में ही है, दूसरे पदार्थ के साथ उसका वो विशेष, ये दूसरा पदार्थ उसका विशेष नहीं हो सकता, दूसरा पदार्थ उसका प्रतिपक्ष नहीं हो सकता। अर्थात चेतन का प्रतिपक्षपना अचेतन के साथ नहीं है, घट का प्रतिपक्षपना पट के साथ नहीं है। तो हमें तो चेतन और अचेतन दो विरुद्ध दिखते हैं ना, तो ये दो विरुद्ध दो पदार्थ अलग अलग है। चेतन पदार्थ में ही हम सामान्य और विशेष ऐसा प्रतिपक्षपना घटित करेंगे। भावार्थ, पूर्वोक्त श्लोक नंबर 8 में जिस सत्ता को तत्व वस्तु का लक्षण कहा गया है वह केवल सामान्य सत्ता नहीं है किंतु अपनी प्रतिपक्ष विशेष सत्ता सहित है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। यानी सत्ता यानी सत्य द्रव्य का लक्षण बताया है, वो द्रव्य कहो तत्व कहो वस्तु कहो कैसी है, तो सामान्य विशेषात्मक है, उसका सत्य लक्षण हो गया। इन्हें सत्ता दोनों की है, सामान्य की भी सत्ता है विशेष की भी सत्ता है। जो सामान्य की सत्ता है वो विशेष की सत्ता सहित है। हमने कहा ना सामान्य विशेष के बिना नहीं है, यानी जहाँ सामान्य है वहाँ विशेष है ही है। जब हमने सत ये द्रव्य का लक्षण बता दिया और द्रव्य कैसा है, सामान्य और विशेष रूप है, तो सामान्य भी सत है विशेष भी सत। देखो यहाँ फिर हम पढ़े इसको कि जो वस्तु का लक्षण कहा है श्लोक नंबर 8 में भावार्थ में पढ़ रहे हम, वह केवल सामान्य सत्ता नहीं है किंतु अपनी प्रतिपक्ष विशेष सत्ता सहित है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कौन सी वस्तु, सभी द्रव्य, छह द्रव्यों की बात, और छह द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है।
अलग आता है कि उत्पाद में द्रव्य उत्तम सत, तो वो सत यहाँ पे जो बताया सत वो दोनों
एक ही है ना। उत्पाद व्यय क्या किया आपने, विशेष कहा,
उत्पाद
विशेष हुआ, द्रव्य में सामान्य को लिया,
वो पर्याय
वो दोनों सत है ना, सत के दो भाग कर दिए हमने, एक सामान्य सत एक विशेष सत, वो एक द्रव्य में हमने उसके भाग ले किए।
सामान्य सत इसमें जो सत है वो, और उत्पाद और व्यय वो विशेष विशेष सत, ऐसे होते देखो देखो वहाँ पहले क्या बताया, उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत, ये सत में दो बार उत्पाद और वे, ये विशेष में गए और जो ध्रुव होता है वो सामान्य है, ये विशेष और सामान्य विशेष सत है और ये सत द्रव्य का है। यहाँ कह रहे सामान्य विशेष आत्मा द्रव्य है, इसी बात में जिसको पहले होता है
अकेले उत्पाद व्यय को लेना, ये बात नहीं। जैसे द्रव्य गुणों का समूह है तो गुण कितने, तो अनंत गुण है, उसके हम भेद करके समझाएंगे तो भेद भी विशेष हो गए। प्रदेशों को हमने समझा, इतने असंख्यात प्रदेश है, वो भी हमने भेद करके समझाए, परंतु असंख्यात प्रदेश ही अखंड है क्या? असंख्यात अलग अलग टुकड़े हैं। आपका घर कितने स्क्वायर फुट का है?
500 स्क्वायर फुट,
500 टुकड़े। तो जहाँ क्षेत्र गिना जाता है वो अखंड होता है। हमने एक बार पहले बताया था ये मान, यानी जो मापने के साधन है ना, जहाँ द्रव्यमान कहा कहते हैं संख्या, वहाँ एक एक चीज अलग अलग होती है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं तो हम कहेंगे 25 लोग बैठे, तो 25 की सत्ता भिन्न भिन्न है, ये द्रव्य हुआ। क्षेत्र में जब हम नापते हैं ये क्षेत्र कितना है, तो हम कहेंगे ये हॉल हमारा इतना 5000 स्क्वायर फुट का हम हॉल बांध रहे हैं, तो वो एक अखंड होता है, उसके किसी यूनिट से नापते हैं। काल, काल भी अखंड होता है और उसको भी हम समय समय के एक एक टुकड़े करके नापेंगे, फिर भी वो अखंड है। आप कितने साल हो गए आपको जन्म होकर, कमने के 60 साल हो गए, तो 60 साल ये काल जो एक 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 समय करके वो तो अखंड है, उसको हमने समय वाला एक यूनिट बनाया। और भाव में जो जिस द्रव्य का जो भाव है, अविभाव प्रतिच्छेदों में गिनेंगे हम, वो भी वैसा ही है। तो केवल द्रव्य प्रमाण जिसको कहेंगे वो उसके अलग अलग संख्याएं जिसको गिनते हैं।
तो हम द्रव्य को सामान्य लेते तो गुणों को विशेष लेते,
हाँ,
तो जब गुणों को विशेष सामान्य लेते तो पर्याय,
हाँ, वो तो बात आगे आएगी अभी तो। हाँ, ये पूरे द्रव्य की बात है, सामान्य विशेषात्मक द्रव्य।
पर्याय में सामान्य विशेष को
पर्याय में लगा,
एक पर्याय में विशेष क्या और दूसरे पर्याय में सामान्य क्या होता,
जानन 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 इतना सामान्य हुआ। अभी उसमें जानने में क्या जान रहा है, उसकी विशेषताएं होगी ना,
उसका विशेषता
हो जाएगी। पर्याय में तो है ही ना, उसका लक्षण ही है
उसका।
वो तो पर्याय का भी ध्रुव है ना, वो तो है। तो अभी तो हम बिल्कुल जो अपना विषय चलेगा ना बिगिनिंग से ऐसे ही
चलेंगे,
ध्रुव
कहने का एक समय की सत है ना, तो वो एक समय की सत को सत्य है ना, वो उसका सामान्य हुआ।
अभी यहाँ द्रव्य के सामान्य विशेष की चर्चा चल रही है, अभी हम पर्याय में गए ही नहीं है। हम क्रम से जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अभी जो विषय चल रहा है उसको समझ लो, चलो कि बाद में देखो इसे ही बात को अगर हम अपने क्रम से दिया जाता है तो एक कथन जहाँ किया वो सब जगह ऐसा ही कि न्याय नहीं होता।
देखो हम क्रम से जाएंगे क्योंकि कितने अभी नए भी सुनने वाले हैं ना, हमारे शशांक भाई है, अमोल है, तो आप ये बीच में दूसरी पूछो मत, ऐसा नहीं कहते मैं, बिल्कुल पूछना, मगर उसमें ज्यादा अगर हम चर्चा में चले गए तो ये बात समझे बिना कुछ उलझने पैदा होगी ज्यादा। तो यहाँ तो जो द्रव्य की जो है सत्य लक्षण कहा है, जो द्रव्य का लक्षण कहा है, और प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, तो ये क्या सामान्य का लक्षण है कि विशेष का? यदि सामान्य विशेषात्मक वस्तु होने से सत सामान्य भी और सत विशेष और दोनों इकट्ठा एक साथ एट ए टाइम विद्यमान होते ही, उसके बिना द्रव्य नहीं होता, यानी जहाँ सामान्य वहाँ विशेष है ही है, जहाँ विशेष है तो सामान्य के बिना तो होता ही नहीं है।
जहाँ द्रव्य सत कह रहे हैं, हाँ, वहाँ साथ में जो पर्याय विद्यमान है वो भी सत
हो जाएगी, अब वो विशेष में हम पर्याय को ले सकते हैं, गुणों के भेद को ले सकते हैं, क्षेत्र के भेद को ले सकते, सभी भेदों को ले सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये हम फिर पढ़ेंगे भावार्थ कि पूर्वोक्त श्लोक नंबर 8 में जिस सत्ता को तत्व यानी वस्तु का लक्षण कहा गया है वह केवल सामान्य सत्ता नहीं है किंतु अपनी प्रतिपक्ष विशेष सत्ता सहित है। यानी सामान्य का प्रतिपक्ष है विशेष है और दोनों के ही सत्ता है, दोनों के ही विद्यमानता है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। यह ध्यान रहे यहाँ पर एक ही पदार्थ की सामान्य सत्ता अपनी विशेष सत्ता के साथ सापेक्ष है, उसकी अपेक्षा है उसमें। द्रव्य की अपनी अपनी, अभी जिस द्रव्य की बात करेंगे तो उसकी अपनी सामान्य सत्ता, उसकी अपनी विशेष सत्ता। पुद्गल की बात करेंगे उसकी अपनी सामान्य सत्ता, उसकी अपनी विशेष सत्ता। दूसरे पदार्थ की सत्ता से कुछ प्रयोजन नहीं है। यानी हमारी जो सामान्य कहो या विशेष सत्ता है वो हम वो एक दूसरे में सापेक्ष है, परंतु पर पदार्थ के साथ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, वो निरपेक्ष है। हाँ, यानी घट का प्रतिपक्ष अपना पट के साथ नहीं, ये कहा ना अभी यहाँ पर। कुछ पूछा आपने? हाँ, चलो आगे पढ़ेंगे। भावार्थ पढ़ा हमने, अभी नया पढ़ेगा। यहाँ यह विवक्षा नहीं है कि विश्व के संपूर्ण पदार्थों की समुदायात्मक सत्ता को महासत्ता यानी सामान्य सत्ता कहा गया हो और प्रत्येक पदार्थ की सत्ता को अवांतर यानी विशेष सत्ता कहा गया हो। ऐसा अर्थ करने से संपूर्ण ग्रंथ का अर्थ मिथ्या हो जाएगा। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये महासत्ता और अवांतर सत्ता क्या है जिसकी विवक्षा यहाँ नहीं है, ये कह रहे हैं। जैसे कल बात आई ना मेटल की, आपने कहा था मेटल का धातु का उदाहरण दिया, ये सभी मेटल अन्य अन्य धातुएं हैं, सबका एक कॉमन नाम क्या है, मेटल। ये तो मेटल की वो महासत्ता, प्रत्येक मेटल का अस्थिपना है, परंतु उसमें कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई पीतल है, कोई अन्य अन्य लोहा है, तो ये क्या उसकी अपनी अपनी सत्ता है, वो अवांतर सत्ता कहते हैं। जैसे इस विश्व में द्रव्य है सत, जो जो सत है कहने से वो क्या हो गया, महासत्ता। सामान्यपने सभी है, जो जो है वो सभी द्रव्य है। अब जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, धर्म भी द्रव्य है, वो क्या हुए, वो अवांतर सत्ता हो
गया।
यहाँ नहीं है उस सामान्य विशेष की बात, यहाँ नहीं है वो जो सामान्य सत्ता और अवांतर सत्ता है वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ सामान्य सत्ता और विशेष सत्ता जो गए वो एक ही द्रव्य में घटित कर,
जो पर्याय की सत्ता की बात कर रहे हैं वो विशेष यहाँ नहीं है।
तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ किसी एक अखंड पदार्थ के, एक अखंड पदार्थ ने एक द्रव्य सामान्य धर्म को सत्ता और उसी के विशेष धर्म को प्रतिपक्षपना कहा है। यानी यहाँ सामान्य की भी सत्ता है, विशेष की भी सत्ता। एक ही पदार्थ में जो सामान्य और विशेष ऐसे दो अलग अलग भेद करते हैं हम, वो दोनों ही सत स्वरूप है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। इसी बात को अब आगे स्वयं ग्रंथकार शंका समाधान पूर्वक श्लोक नंबर 22 तक सिद्ध करेंगे। ये कोई ऐसी बातें नहीं इंट्रोड्यूस करके कहकर छोड़ नहीं दे रहे, एक एक विषय को लेके उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसके लिए शंका, देखो ये पहले के आचार्यों की कहो या ज्ञानियों की पंडितों की ऐसी पद्धति है, स्वयं ही शंका उठाएंगे, स्वयं उसका उत्तर देंगे। सामने वाले जीव में क्या शंका है, वो पंडित टोडरमल जी की बात हमने देखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशन स्वयं अन्य 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 प्रश्न उठाते हैं। यदि तुम ऐसा कहोगे तो उसके लिए ये समाधान, ये तुम ऐसा कहो तो उसके लिए ये समाधान, इस तरह यहाँ पर भी शंका और समाधान बताया। सेकंड लाइन में एक करेक्शन है, देखो सेकंड लाइन में पढ़ती हूँ, पर पक्षे निरपेक्षा स्वात्मनी पक्षे व लंबिनी भी है ना, म और ब चाहिए, अवलंबिनी ऐसा शब्द है, पुराने पुस्तकों में शायद किया हुआ होगा।
हाँ
तो मोह है, अभी हम पढ़ेंगे। अत्राहैवं कश्चित् सत्तायासा निरंकुशा भवतु परपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पक्षे वलम्बिनी अस्मात्। अब ये शंकाकार कह रहा है, क्या करता है यहाँ कोई ने एक शंकाकार या अन्यमति, शंकाकार तो जैनी भी हो सकता है और अन्यमति ने वो भी जैनी होगा पर उसकी मान्यता अन्यमति के अनुसार, ऐसे भी है ना। तो इस प्रकार कहता है जो सत्ता तत्व का लक्षण पूर्वोक्त श्लोक में यानी 8 नंबर में कहा गया है वह सत्ता निरंकुश निरपेक्ष और स्वतंत्र होवे, यानी उन प्रदेशों में केवल सामान्य का स्वरूप होवे, विशेष का स्वरूप उसमें न होवे, यानी ऐसा होवे ऐसे वो कह रहे हैं, क्योंकि वह परपक्ष में यानी विशेष स्वरूप में निरपेक्ष होती हुई यानी विशेष स्वरूप को धारण न करती हुई अपने पक्ष में रहने वाली होगी यानी केवल सामान्य स्वरूप की धारक होगी। यहाँ प्रश्न ये है कि परसे तो निरपेक्ष कह रहे हो परंतु वो विशेष के भी निरपेक्ष सामान्य कहो ना, उसमें क्या जाता है वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक कह रहे हो तो जो सामान्य है तो विशेष के बिना हो जावे उसमें क्या आपत्ति आती, ये उसका प्रश्न है। यानी विशेष से निरपेक्ष सामान्य हो जावे ऐसा क्यों नहीं है, ऊपर क्या क्या सामान्य है वो विशेष के बिना नहीं होता, विशेष भी सामान्य के बिना नहीं, एक दूसरे से सापेक्ष है। तो इसके ऊपर शंकाकार शंका उठाता है कि वो निरपेक्ष हो गए ना उसमें क्या आपत्ति, ये उनकी शंका है। भावार्थ समाधान तो दूसरे श्लोक में किया, यहाँ तो केवल हमको शंका क्या है उसको समझना है, उसी शंका को भावार्थ में और बता रहे कि शंकाकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य सत्ता के प्रदेश भिन्न और विशेष सत्ता यानी स्वरूप के प्रदेश भिन्न स्वीकार करके प्रश्न कर रहा है, यानी किसी द्रव्य का सामान्य कहीं अलग रखा रहता हो और उसके विशेष कहीं अलग रहते हो, प्रदेश भिन्नता स्वीकार कर रहा है और ऐसा मानकर वो प्रश्न कर रहा है कि उसके बिना निरपेक्ष ये सामान्य की सत्ता हो गई उसमें क्या आपत्ति है।
इसमें जबकि ये भूल हो रही है कि द्रव्य का द्रव्य द्रव्य का क्षेत्र और गुण का द्रव्य और गुण का क्षेत्र दोनों हमेशा एक ही होते हैं, यानी जहाँ द्रव्य है वही गुण है, यानी दोनों का द्रव्य भी एक ही है दोनों का क्षेत्र भी एक ही, आगे जाओ तो काल में एक है वहाँ, तो आप इसकी बात नहीं ले रहे, ऐसा होते हुए भी वो ऐसा कह रहे हैं सामान्य का क्षेत्र अलग है और विशेष का क्षेत्र अलग है, यानी द्रव्य के प्रदेश अलग है और गुण के प्रदेश अलग है, ऐसा मानने वाला पहले बोला था दोनों अलग अलग सम्मान होकर इकट्ठा आएगा, वो टाइप की है गलती है।
देखो भावार्थ भी पढ़ेंगे, शंकाकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य सत्ता यानी स्वरूप के प्रदेश भिन्न और विशेष सत्ता यानी विशेष स्वरूप के प्रदेश भिन्न स्वीकार करके प्रश्न कर रहा है, यानी उसको ऐसा लगता है कि सामान्य के वो प्रदेश भिन्न है और विशेष के वो अलग जगह रहता है, ऐसा कर रहा है प्रश्न कि जब दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है तो फिर आपस में सपक्षपना कैसे, तो उसमें एक दूसरे से क्या सापेक्षपना हो सकता, नहीं हो सकता, निरपेक्षपना यानी निरंकुश होना चाहिए यानी एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों अपने अपने स्वरूप और अपने अपने प्रदेशों में है। शंकाकार की मान्यता अनुसार विशेष निरपेक्ष सामान्य और सामान्य निरपेक्ष विशेष है, ये मान्यता कैसी है जो गधे के सिंगवत ही ठहरता है। अमोल आपने गधे का सिंह देखा है? ऐसा कोई तत्व ही नहीं, यानी इसमें क्या बात हो गई ऐसा कोई तत्व नहीं, ऐसे कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कोई द्रव्य नहीं, यानी ये बात यहाँ नक्की होगी। प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और वो सामान्य और विशेष एक दूसरे में सापेक्ष है, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना ये नहीं। जगत के सब पदार्थ तो सामान्य विशेषात्मक है, जो सत सामान्य है वही तो सत विशेष है, यानी जीव के बारे में लिखा है, परंतु जो सत सामान्य है वही सत विशेष है, यानी जो द्रव्य हम सामान्य की अपेक्षा देख रहे हैं वही तो द्रव्य विशेष रूप से है, क्योंकि सामान्य विशेष दोनों ही उसके एट ए टाइम दोनों अंदर है, हम एक को एट ए टाइम देख सकते हैं, जान सकते हैं, कह सकते हैं। ये जो शंका पूछी थी कि वो निरपेक्ष निरंकुश होने दो, तभी उसका समाधान कह रहे 17 नंबर के श्लोक में,
तन्नयतो हि विपक्षः कश्चित् सत्त्वस्य वासपक्षोऽपि द्वावपि नयपक्षौ तौ मिथो विपक्षौ विवक्षितापेक्षा।
ऐसा नहीं है, तत् न डबल न हुआ ना, तत् न तो का न हुआ, तन्न आपको बताया था, सन मात्र कैसा शब्द बना है, सत मात्र, इसे तन्न तत् न ऐसा नहीं है, अर्थात सामान्य सत्ता स्वतंत्र नहीं है। अब इसका कारण भी तो बताएंगे, ये तो है ना, क्योंकि सत्ता का कोई सपक्ष, सपक्ष और प्रतिपक्ष ऐसे दो बताओ ना, विपक्ष, तो सत्ता का कोई सपक्ष यानी सामान्य स्वरूप और कोई विपक्ष यानी विशेष स्वरूप भी अवश्य है। जब सत्ता कहेंगे तो दोनों ही पक्ष वहां पर है, सामान्य भी और विशेष भी, वे दोनों नय पक्ष है, अर्थात आपस में एकमेक है, जिस दृष्टि से देखो सत उसी रूप दिखता है, सामान्य दृष्टि वाले को संपूर्ण सत सामान्य दिखता है, यानी सामान्य की अपेक्षा अगर हम उसकी दृष्टि से द्रव्य को देखेंगे, नहीं समझे, आपके पास सोना कितना है, कितने किलो है, 5 किलो, अच्छा 5 किलो, 5 किलो ठीक है, तो हमने आपको पूछा हाँ सोना कितना है, तो आपने बता दिया इतना इतना है, तो हमने पूछा कौन कौन से गहने हैं, किस रूप में है, तो किस रूप में है, तो फिर हम वो सामान्य सोना की दृष्टि छोड़ दी। पहले जब हमने सोना पूछा था तो आपने वो गहने नहीं गिनाए थे, उसके डिजाइन को गौन कर दिया, सोना कितना है उसको बताया। अब हमने पूछा कि वो किस रूप में विद्यमान है, हमने कहा इतने बंगड़ी है, इतने लॉकेट है, इतना ये जो कुछ कहना है वो सब अपने लिस्ट बता दिया, इतना है, तो हमने वो सामान्य की बात थोड़ी गौन करके विशेष को, परंतु एट ए टाइम दोनों है ना, सोने की तो चीजें हैं सब, सोना भी उसी समय विद्यमान है और वो किसी न किसी रूप में तो है, अवस्था तो होगी होगी, अवस्था के बिना कोई द्रव्य नहीं होगा, विशेष के बिना कोई सामान्य ही नहीं होगा, यही कहते हैं यहाँ पर कि सत्ता का कोई सपक्ष यानी उसका सामान्य स्वरूप है और कोई उसका विपक्ष यानी विशेष स्वरूप भी अवश्य है, वे दोनों नए पक्ष है, यानी किस दृष्टि से किस नजर से हम देखते हैं उसको वो नए कहेंगे, पर एट ए टाइम दोनों है, दोनों का एट ए टाइम स्वीकार करेंगे तो उसको हम प्रमाण कहेंगे, ये प्रमाण की वस्तु है सर, और उसमें से सामान्य को बात करेंगे तो वो नए एक अलग होगा, और विशेष को जानेंगे तो उसका दूसरा नए कहेंगे, नए से जब जानते हैं तो दूसरा जो नए उसका स्वीकार है, जब सामान्य को जान रहे तो विशेष का स्वीकार है, उसको गौण किया, जब विशेष को मुख्य करके जान रहे तो सामान्य को गौण किया, पर वो है वहां पर और उसका स्वीकार भी है, ये तो सर्वथा भेद रूप या सर्वथा सामान्य रूप वस्तु है ही नहीं, यही कह रहे हैं यहाँ पर, वे दोनों नए पक्ष है अर्थात आपस में एकमेक है, जिस दृष्टि से देखो सत उसी रूप दिखता है, यानी पूरा द्रव्य उस रूप से दिख रहा है, हम विशेषों को गौण करके सामान्य की नजरिए से देखेंगे तो पूरा द्रव्य वैसा दिख रहा है, तो फिर प्रश्न पूछते हैं पर्याय है कि नहीं है, अभी जिस समय सामान्य की दृष्टि से देख रहे हैं उस है उसका स्वीकार तो है ना, गौड़ कर दिया, उस नजर में नहीं दिख रहा, पूरा द्रव्य सामान्य रूप से दिख रहा। सामान्य दृष्टि वाले को संपूर्ण सत सामान्य दिखता है और विशेष दृष्टि वाले को सारा सत विशेष रूप दिखता है। ये हमेशा उदाहरण देते हैं, सम्य दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, पूरा द्रव्य को वो तो एक पर्याय की अपेक्षा हम जान रहे हैं। ये अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ है, वो ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा हमने पूरे द्रव्य को जाना है। और विवक्षित, विवक्षित है ना जिसको वक्ता कहना चाहता हो, विवक्षित की अपेक्षा से दोनों आपस में विपक्ष है, यानी सामान्य की अपेक्षा देखो तो विशेष विपक्ष हुआ, विशेष की अपेक्षा देखो तो सामान्य उसका विपक्ष हो गया, दोनों आपस में विपक्ष है। विपक्ष समझते, विरोधी पक्ष उसका, प्रतिपक्ष। सामान्य की विवक्षा में, विवक्षा ने विवक्षा होता है किसी अपेक्षा से कथन करना, उसको विवक्षा कहते हैं। सामान्य की विवक्षा में विशेष विपक्ष है, अर्थात गौण रूप से वस्तु में खड़ा रहता है, वो विद्यमान है पर गौण रूप से है। और विशेष की विवक्षा में, यानी जब हमने विशेष को मुख्य करके कहना या जानना शुरू किया, सामान्य तो है ना वहां पर, तो सामान्य विपक्ष है अर्थात गौण रूप से वस्तु में खड़ा रहता है। जब हम कहेंगे ना आपने सोना गिना है तो ना हमारे पास इतनी बंगड़ी है, तो बिना सोने की बंगड़ी है कि सोने की बंगड़ी है, सोने की, फिर भी हम गिन रहे हैं तो अभी उसको गौण रखा है क्योंकि हमने उसको पहले जाना है कि सोने की है, हमने नक्की कर लिया है, फिर हम वो बंगड़ी है कि लॉकेट है वो कहें, पर सोना ही नहीं है और हम, हमारे पास सोना बिल्कुल नहीं है और हम सोने की बंगड़ी गिन रहे हैं। आप कहेंगे प्लास्टिक की बंगड़ी, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। भावार्थ, हर एक तत्व, तत्व कहने से वस्तु, सत्ता, हाँ द्रव्य कहो, सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए उसमें दोनों धर्म युगपत रहते, युगपत है एट ए टाइम, परस्पर सापेक्ष है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, युगपत है और एक दूसरे से सापेक्ष है, उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं है। वक्ता को जिससे प्रयोजन हो उसको सपक्ष बना लेता है, यानी जिसका कथन करना है वो सपक्ष हुआ और जिसको गौण किया वो विपक्ष हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि सामान्य हमेशा सपक्ष होगा, कभी सामान्य को सपक्ष बनाएंगे, कभी विशेष को सपक्ष बनाएंगे, ये वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर है। वो वस्तु को समझाना चाहता है, आचार्य है वो, आत्मा क्या, आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा है कहने से नहीं समझता है, फिर उसका विशेष कह के समझाएंगे, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, फिर वो गुण कैसे रहते हैं, उसकी गुणों की परिभाषा क्या, ये जो हम सिद्धांत प्रवेशिका में क्या रहे, पूरा विशेष खोल खोल कर समझाते, क्योंकि हम वस्तु कैसी है उसको नक्की करना है। तो वक्ता के अभिप्राय पर ये निर्भर है कि किसको मुख्य गौण किया जा सकता है। तो वक्ता को जिससे प्रयोजन हो, प्रयोजन है जिससे प्रयोजन है, जो समझाना चाहते हो, उसको सपक्ष बना लेता है और दूसरे को विपक्ष बना लेता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्वतंत्र ने भिन्न भिन्न प्रदेश वाले हैं, ख्याल में ही बात, ये सर्वथा भिन्न नहीं है, वस्तु प्रमाण रूप है। प्रमाण तो उसी को कहते हैं कि दोनों ही सामान्य विशेषात्मक जब कहेंगे तो वही प्रमाण, अकेले सामान्य के रूप में पूरी वस्तु को देखेंगे तो कहेंगे वो नए होगा, और अकेले विशेष के रूप में हम पूरी वस्तु को देखेंगे, दूसरा पक्ष हमने रखा है गौण करके, उसको भी नए कहेंगे। तो नए की परिभाषा ही ऐसे, प्रमाण से जानी हुई वस्तु के किसी अंश को हम जानते, पूरी वस्तु को उस अंश के रूप में देखते हैं, तब हम उसको हम नए कहेंगे। तो ये वस्तु प्रमाण रूप है, यानी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, दोनों पक्ष एक एक नए के विषय है, पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है, और एक एक धर्म एक एक पक्ष एक एक नए का विषय, यानी नए किसको कहेंगे, वो उस एक पक्ष को विषय करता है, पर वही एक पक्ष को विषय करता है तब दूसरे नए की सापेक्षता है उसके, उसको स्वीकार है, उसको गौण करके स्वीकार, उसको अभी मुख्य नहीं किया। तो दोनों पक्ष एक एक नए के विशेष है और सापेक्ष नए सम्यक है, निरपेक्ष मिथ्या है। ये बहुत महत्व की बात है, नए में ये बहुत फॉरमोस्ट महत्व की बात है कि सापेक्ष नए सम्यक है। सापेक्ष ने जब सामान्य की बात करें तो वो विशेष की अपेक्षा स्वीकार है, उसको सापेक्ष कहेंगे, और निरपेक्ष ने सर्वथा, वह सर्वथा विशेष रूप है कहेंगे, तो क्या हुआ, ये मिथ्या हो गया, उसको नए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने वो प्रमाण को ही उड़ा दिया ना, और एक नए में पूरी वस्तु ऐसी मान ली, सर्वथा मान ली, वो नए भी नहीं रहा, वो तो मिथ्या मान्यता हो गई। अब आगे आते हैं यहाँ पर, यानी अभी जो हमने दो तीन पैराग्राफ पढ़े ना, बिल्कुल महत्व की बातें इसमें आ गई। ये सारा जिनांग यानी जो द्रव्य का जो मूलभूत जो अंग है, उसका स्वरूप है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है, ये फंडामेंटल्स है। इसमें जितनी क्लैरिटी यानी जो हम ज्ञान में इसकी जो विशेषता भाषित हो, तो पूरा ही आगे का सरल हो जाएगा विषय, और इसको फंडामेंटल्स को अधिक स्पष्ट रूप से जाने बिना समय दर्शन होने का कोई सवाल नहीं, उसके बिना समय दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान में तो इतनी निर्मलता आनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छता, जैसे कि ये भाषित होने चाहिए, वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का सही स्वरूप नहीं भाषित हो और ज्ञान में ही कहीं संशय सम कंफ्यूजन चल रहा हो, तो समय दर्शन नहीं हो सकता। आप कुछ कह रहे थे, 7 नंबर के पृष्ठ पर आए हम, 18 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, ये भी फिर शंका पूछ रहे हैं। अत्राप्याहक दृष्टिर् यदि नय पक्षौ विवक्षितौ भवतः कानः क्षतिर्भवेताम् अन्यतरेणेह सत्व संसिद्धिः। इस पर भी मिथ्या दृष्टि यानी अन्यमति शंकाकार कहता है, यदि आपके दोनों नए पक्ष विवक्षित है तो रहे, हमारी कुछ हानि नहीं, क्योंकि इनमें से किसी एक से सत्व यानी सत्ता की वस्तु की पदार्थ की सिद्धि हो जाएगी, यानी एक ही नए को स्वीकार करो, उसी से वस्तु को स्वीकार यानी सिद्ध कर दो। ये क्या कहना चाहता है शंकाकार, वो भावार्थ में बता रहे। शंकाकार कहता है कि सामान्य सत्ता और विशेष सत्ता तो आप भी दोनों मानते हो, फिर क्या झगड़ा। उसने कैसे माना था, बिल्कुल प्रदेश भिन्नता मानी, और ये पूछ रहे आप भी दोनों को अलग अलग तो स्वीकार कर ही रहे हो, हमारा तो किसी एक से ही काम चल जाएगा, अर्थात वह वस्तु को सामान्य विशेषात्मक अखंड प्रदेशी नहीं मानकर वस्तु को किसी एक रूप मानना चाहता, अनेकांत रूप नहीं एकांत रूप मानना चाहता, वेदों को मानना ही नहीं चाहता, बस सामान्य ही वस्तु है। ये क्या हो गई उसकी मिथ्या मान्यता हो गई। इसके लिए समाधान 1922 तक के श्लोकों में बताएंगे, पहले हम 19 नंबर को पढ़ेंगे। तन्नयतो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयात्मकं वस्तु अन्यतरस्य विलोपे शेषस्यापि लोप इति दोषः। तन्न यहाँ पर आया था ना समाधान में, तत्न यत है ने क्योंकि, यानी जो शंकाकार पूछ रहा है कि आपको भी दोनों नए पक्ष विवक्षित है, हम उसमें से एक को ही स्वीकार करेंगे तो क्या हानि है, तो कहते ऐसा नहीं है, अर्थात तुम किसी एक से वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते, यानी मात्र सामान्य है हमने वस्तु को सिद्ध किया, मात्र विशेष है वस्तु को, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय उभय रूप है, उभय ने दोनों रूप है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, या द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक रूप उभय नय का विषय है। देखो क्या कहना चाहते हैं, जिसको हम सामान्य कहेंगे वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। उस नय का नाम क्या है? द्रव्यार्थिक अर्थ है ना, उसका प्रयोजन क्या है? तो द्रव्य को सामान्य को मुख्य करके जानना, ये उसका प्रयोजन, तो उसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। पर्याय किसको कहते हैं? तो भेद को कहेंगे। वो अकेले एक एक समय के पर्याय उसकी बात नहीं, गुणों का भेद को, क्षेत्र का भेद, कोई भी भेद करके जानना, उसको कहिए पर्यायार्थिक नय का विषय। उसका प्रयोजन क्या है? भेद करना। और वस्तु कैसी? उभय नय का विषय, तभी तो उसको हम प्रमाण कहेंगे। प्रमाण से जाने हुई वस्तु के हमने एक एक अंश को जानने के लिए हमने दो अलग अलग नय बनाए, उसका नाम है एक का द्रव्यार्थिक नय, वो सामान्य को विषय बना रहा है। पर्यायार्थिक नय वो विशेष को विषय बना रहा है। यहाँ तक बात ख्याल में? यानी कैसी वस्तु सामान्य विशेषात्मक, ये कुछ समझ में नहीं आ रही तो पूछना अमोल। इनमें से किसी एक का लोप करने पर, लोप करने उसको मानेंगे ही नहीं, हाँ, नाश करने पर दूसरे का भी लोप हो जाएगा, यह दोष आ गया। यानी हम उसका हम विशेष को मानेंगे नहीं, तो कहते विशेष के बिना सामान्य भी नहीं होता, तो सामान्य को भी नष्ट होने का प्रसंग आ गया। हम कहेंगे विशेष को मानेंगे, सामान्य को मानेंगे नहीं, तो सामान्य के बिना तो विशेष की उत्पत्ति किसमें से हो जाएगी, तो कहते वो भी नहीं रहेगा। तो एक को नहीं मानेंगे तो दूसरे को भी लोप होने का प्रसंग आ जाता है। भावार्थ, भाई यदि तो एक को छोड़कर दूसरा मानना चाहता है, एक को छोड़कर की बात है, सर्वथा एक को ही पूरी वस्तु उस रूप से सर्वथा मानेंगे तो यह कैसे बने? चीज तो एक ही है, अतः इस प्रकार तो शून्य का प्रसंग आएगा, वस्तु ही खत्म हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं, परंतु उसकी मान्यता अगर ऐसी है तो उसमें उस मान्यता में ये दोष आता है। नोट, निरपेक्ष वस्तु का खंडन करके अब सापेक्ष वस्तु का स्वरूप कैसा है? ये सापेक्ष वस्तु नहीं, वस्तु किसी अन्य वस्तु से सापेक्ष नहीं है, एक ही वस्तु में सामान्य और विशेष जो दो हमने अंश देखे वो एक दूसरे से सापेक्ष है। अभी वो सापेक्ष बनाने वस्तु का सापेक्ष स्वरूप कैसा है, श्लोक 20, 21 और 22 द्वारा उसे समझाते हैं। इसके लिए पहले हम 20 को पढ़ेंगे। प्रतिपक्षमसत्ता स्यात् सत्तायास्तद्यथा तथा चान्यत् नानारूपत्वं किल प्रतिपक्षं चैकरूपतायास्तु। पहले आधे का अर्थ करते हैं, यानी पहली लाइन का। इसलिए जैसा सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता है, उसी प्रकार दूसरा भी है, अर्थात असत्ता का प्रतिपक्ष सत्ता है। देखो यहाँ क्या, प्रतिपक्षम असत्ता स्यात् सत्तायाः, यानी सत्ता का प्रतिपक्ष असत्य। तद यथा तथा च अन्यत्, उसी प्रकार उल्टा, उसका भावार्थ पहले देख लेंगे फिर दूसरे लाइन का अर्थ देखेंगे। जिस समय महासत्ता सत्ता रूप से विवक्षित होती है, उस समय अवांतर सत्ता असत्ता हो जाती है, और जिस समय अवांतर सत्ता सत्ता रूप से विवक्षित होती है, उस समय महासत्ता असत्ता हो जाती है, क्योंकि सामान्य या विशेष जिस स्वरूप को वक्ता को कहना होता है उसको वह सत्ता रूप से विवेचन करता है, दूसरी गौण हो जाती है। असत्ता का अर्थ यहाँ असत्ता अर्थात अभाव नहीं है किंतु गौण है, ये गौण को ही यहाँ असत्ता कहा है। इसके लिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, अर्पिता अनर्पित सिद्ध है, अर्पित अनर्पित सिद्ध, अर्पित का अर्थ क्या है? मुख्य। अनर्पित ने गौण, यानी वस्तु की सिद्धि अर्पित और अनर्पित मुख्य और गौण से होती है। ये तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र है मालूम है? लिख ले रहते हैं पांचवे अध्याय का 32 नंबर का सूत्र। यानी यहाँ क्या कहा हमने, जहाँ एक को सत्ता कहा तो दूसरी प्रतिपक्ष असत्ता हो जाती है, गौण होकर असत्ता कहना, सर्वथा असत्ता नहीं है। अभी दूसरे आधे का अर्थ, सेकंड लाइन का अर्थ कर रहे, किंतु एक रूपता का प्रतिपक्ष तो निश्चय से नाना रूपता है। भावार्थ, एक रूपता अवांतर सत्ता को कहते हैं और नाना रूपता महासत्ता को कहते हैं। यह ध्यान रहे, एक रूपता महासत्ता को और नाना रूपता अवांतर सत्ता को नहीं कहते। इसकी सूचना के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर की पंक्ति महासत्ता की ओर से है और नीचे की पंक्ति अवांतर सत्ता की ओर से है। देखो वहाँ अभी हमने वो मेटल का उदाहरण लिया, वही बात है। जब महासत्ता की बात करेंगे हम, जिसे सभी द्रव्य है सत्पन, ये महासत्ता होगा। अब ये जी द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये अवांतर सत्ता हो। जब हम महासत्ता की बात कर रहे हैं तो हमने वो जीव है कि पुद्गल है उसको गौण करके रखा, सबको है रूप में ले लिया हमने। जो जो है वो द्रव्य है, वो जीव है कि पुद्गल है उसकी चर्चा नहीं कर रहे। जब हम उसको जीव द्रव्य है ऐसा कह रहे हैं तो अवांतर सत्ता को मुख्य कर दिया, तो वो बाकी भी है परंतु अभी उसको गौण करके हम बस जो जीव है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। वो सामान्य ने प्रत्येक द्रव्य का सामान्य नहीं, सभी द्रव्य में सत्पना जो सामान्य है उसकी अपेक्षा उसको महासत्ता कहा। आगे श्लोक 21-22 फिर महासत्ता की ओर से है। देखिए श्री पंचासी का गाथा 8 मूल तथा टीका नाना रूपता को सविश्व रूपा भी कहा है। यानी विश्व रूपा ने अनेक रूपा, विश्व रूपा ने पूरा विश्व के रूप में ऐसा नहीं है, विश्वता है ना अनेक रूपता। अभी 21 नंबर को हम पढ़ेंगे। ये पहला जो ध्रुव चाहिए, सेकंड लाइन पहला शब्द ध्रुव दिख रहा है ना, ध करना उसका, द्रव्योत्पाद विनाश। पढ़ेंगे, एक पदार्थ स्थितिरिह सर्व पदार्थ स्थितिर्विपक्षत्वं द्रव्योत्पाद विनाशै स्त्रीलक्षणाया स्त्रीलक्षणाभावः। यहाँ सर्व पदार्थ स्थिति यानी महासत्ता, सबकी सत्ता है ना स्थिति, तो महासत्ता का विपक्षपना एक पदार्थ स्थिति है जिसको हमने अवांतर सत्ता
कहा।
क्या
महासत्ता में आपने पूरी सत्ता को है माने सभी द्रव्य को पकड़ लिया,
हाँ।
और यहाँ अवांतर सत्ता में आखिर का एक यूनिट माने एक, जीव भी नहीं अकेला एक जीव,
एक एक की सत्ता, एक पदार्थ की सत्ता, हाँ। एक पदार्थ में वो एक जाति अपेक्षा भी ले सकते हैं और एक अकेला जीव भी ले सकते हैं। हम किस विवक्षा से बात करते उस पर नहीं। देखो यहाँ सर्व पदार्थ स्थिति का विपक्षपना एक पदार्थ स्थिति है और द्रव्य उत्पाद व्यय द्वारा त्रिलक्षणा यानी महासत्ता का प्रतिपक्ष त्रिलक्षणा भाव अर्थात केवल द्रव्य, केवल उत्पाद या केवल व्यय अत्रिलक्षणा अवांतर सत्ता है। अभी उसमें ही महासत्ता और वो और भी अलग बात बताइए। हर एक की सत्ता अलग अलग होता है। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखो भावार्थ। सर्व पदार्थ स्थिता का अर्थ यह नहीं है कि सब में ठहरी हुई यह सब पदार्थों की समुदायात्मक एक सत्ता, किंतु इसका अर्थ स्वयं ग्रंथकार ने आगे श्लोक 265 में किया है, सर्वार्थ सार्थ संस्पर्शी अर्थात पदार्थ समूह को छूने वाली, क्योंकि सत की अपेक्षा तो सभी समान है। सब तीन की अपेक्षा तो सभी समान है, त्रिलक्षण। सामान्य धर्म से पदार्थ में भेद नहीं होता, सबके सादृश्यता की सूचक है, न कि सबके एक अस्तित्व की। क्योंकि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जब हम महासत्ता कहते हैं तो हरेक की अपनी अपनी सत्ता भिन्न है, सब मिलकर एक सत्ता नहीं हो गई है, सबका मिलकर एक अस्तित्व नहीं कहेंगे, सभी है ये सादृश्यपना है, सब सत्पना सभी का अपना अपना है, तो ये सत्पना सभी में समान है इसलिए उसको महासत्ता। जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है, सभी है ये है पना नहीं, सत सभी में समान है, सादृश्य है इसलिए उसको महासत्ता। अवांतर सत्ता जीव की अपनी है, वो चेतन सत्ता है, उसकी अवांतर सत्ता हुई अपनी अपनी, हर एक जीव में भी हर एक जीव की अपनी अपनी सत्ता भी नहीं है। ये आगे समझाएंगे ना, वहां से भी हम पढ़ेंगे, पेज 70 लिखा है मेरे यहाँ पर, कल इसकी चर्चा करें। अभी जरा देख लेते हैं, सेवन जीरो 265 में बता रहे हैं ना। देखो डायरेक्ट नीचे का भावार्थ पढ़ेंगे, तीन चार लाइन पढ़ेंगे हम। हर एक पदार्थ का अस्तित्व गुण जुदा जुदा है, उस पेज नंबर 70 265 का भावार्थ लास्ट पैराग्राफ एकदम मिला ना। देखो पढ़ेंगे, हर एक पदार्थ का अस्तित्व गुण जुदा जुदा है, हमने देखा ना जितने द्रव्य है उतना उसका अपना हर एक का सामान्य गुण है, तो सामान्य गुण है सबका मिलकर एक नहीं हुआ, सबका अपना अपना अलग अलग है। उसी अस्तित्व गुण को सत इस नाम से भी कहते हैं, क्योंकि उसी से वस्तु की सत्ता कायम रहती है। वह सत गुण सामान्य रीति से सब वस्तुओं में एक सरीखा है, कॉमन, सब में मिलकर एक नहीं है, एक सरीखा होने से उसे एक भी कह देते हैं और उसी का नाम महासत्ता रखते हैं। सब में सत्पना है, सब में समान है अपना अपना अस्तित्व, भिन्न भिन्न होने पर भी ये अस्तित्व की अपेक्षा सब में ये समानता है, तो इसके लिए उसको महासत्ता कहते हैं। वास्तव में महासत्ता नामक कोई एक पदार्थ नहीं है, केवल समानता की अपेक्षा से इसको एकत्व संज्ञा, संज्ञा ने नाम मिली, उसका नाम मिला है। अब हम 8 पृष्ठ पर आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी तो यहीं रुकेंगे। जानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देतः।